दोस्तों नमस्कार। एक मुलाकात जरूरी है कि इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं यानी आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों हमारा ये एपिसोड वर्ष 2016 का अंतिम एपिसोड है। इसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात अब अगले ही साल होगी। तो दोस्तों आज के इस नववर्ष विशेष एपिसोड में हमारे मेहमान भी बेहद विशेष हैं। 80 और 90 के दशकों में जब फिल्म संगीत की लोकप्रियता मंद पड़ गई थी, तब संगीत प्रेमियों ने माधुर्य तलाश कर लिया था गजलों में। अदब और संगीत के उस जबरदस्त दौर का एक बेहद चमकता सितारा आज रोशन हुआ है हमारी महफिल में। तो साथियों, श्रोताओं, आइए स्वागत करें मखमली आवाज के धनी गजल गायकी के सरताज, संगीत प्रेमियों की आस, सरल सुरीले सजीले चंदन दास जी का। चंदन दास जी, रेडियो प्लेबैक इंडिया और एक मुलाकात जरूरी है कार्यक्रम के इस नववर्ष विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सजीव सारथी जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलाकात जरूरी है प्रोग्राम के सुनने वालों को मेरा आदाब। आने वाले नए साल की बहुत बधाई।
बधाई आपको भी चंदन जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके परिवार से कोई संगीत से जुड़े हुए नहीं थे, फिर कब, कहाँ और कैसे संगीत आपके जीवन का एक सबसे अहम हिस्सा बनकर उभर आया? सबसे पहले तो हमें यही बताइए आप।
मेरे परिवार में प्रोफेशनली गाना कोई भी नहीं गाता था, लेकिन बंगाली परिवार में संगीत की बहुत अहमियत होती है। हर घर में हारमोनियम ज़रूर होता है और मेरे घर में भी इसी तरह मेरी सिस्टर जो है वो शौकिया गाती थी और मुझे वहीं से शौक पैदा हुआ।
जी चंदन जी, लेकिन जिस दौर में आप बता रहे हैं कि आपको संगीत के प्रति लगाव लगा और आपने शायद सीखना शुरू किया, तो उस दौर में तो पार्श्व गायक जैसे रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश, ये सब अपने चरम पर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहेगा वो इन्हीं को अपना आदर्श बनाकर आगे चलेगा। ऐसे में आपने गजल गायकी को ही क्यों चुना अपने संगीत सफर के लिए?
सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि गज़ल गाने के लिए क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं बचपन से ही मैं सीख रहा था। दिल्ली में मैं पंडित मणि प्रसाद जी से मैं बाकायदा तालीम ले रहा था और मैं गज़ल को मैं बहुत सुनता था। मैं और मेहदी हसन खान साहब को कैसे गाते हैं, वो किस तरह गाते हैं, मैं बहुत उनको फॉलो करता था और बाकायदा उन्हीं की गज़लें मैं गाया करता था। और साथ साथ जो है वहाँ शेर व शायरी मुशायरा में जाना, शेर व शायरी ये सब सुनना, शायरों से राबता रखना, ये सब मैं करता था वहाँ पे। और मुझे उससे और भी ज़्यादा गज़लों में इंटरेस्ट आया।
और कब आपने ये डिसाइड किया कि आपको मुंबई आ जाना चाहिए?
मुंबई जाने का कोई ख्याल नहीं था। दिल्ली में एक कंपनी थी अमृतवाणी, जिससे मेरा एक कैसेट निकला और वो कैसेट तलत अली साहब ने सुना और तलत अली साहब मुझे मिलने आए दिल्ली और मुझे कहने लगे कि भाई नए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं म्यूज़िक इंडिया कंपनी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए बात करूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बात किया म्यूज़िक इंडिया से और उन्होंने मुझे बॉम्बे बुला लिया।
जी, तलत जी के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता है आपका, जिसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा है कि चंदन दास की खोज करने वाले तलत अजीज ही थे। तो ये रिश्ता थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए कि ये वहाँ से शुरू हुआ दिल्ली से, और उसके बाद क्या ये अभी तक कायम है, अभी भी आप लोग संपर्क में हैं, और क्या मायने रखते हैं तलत जी आज भी आपके जीवन में?
तलत भाई ने जो मेरे लिए किया, एक आर्टिस्ट के लिए करना तो दूर की बात है, सोचना भी बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं सोचता। पहली बार जब मैं बॉम्बे आया तो उन्होंने हमारा प्रोग्राम रखा, यहाँ काफ़ी लोगों से, म्यूज़िक डायरेक्टर से मुलाकात की। उसके बाद हम लोग म्यूज़िक इंडिया गए, म्यूज़िक इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर मेरा एल्बम आया। और आज भी जब भी हम मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं और कभी भी वो क्रेडिट नहीं लेते हैं इस बात की। वो बहुत अच्छे सिंगर तो हैं ही हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं।
जी चंदन जी, आप दोनों की दोस्ती यूं ही बरकरार रहे, यही हमारी दुआ है। चंदन जी, आपकी पहली ही एल्बम ऐसी थी जिसने आपके लाखों मुरीद बना दिए थे। यकीनन इस एल्बम की हर गजल एक नायाब नगीना थी। इस एल्बम में एक बहुत ही खूबसूरत गजल थी जो मुझे आज भी बहुत पसंद है। ये चिराग बेनजर है, ये सितारा बेजुबां है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। चंदन जी, थोड़ा सा इसे हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुना दीजिए प्लीज।
हाँ संजीव जी, जरूर मैं इस गजल को गाऊंगा। इसके शायर हैं डॉक्टर बशीर बदर और लोगों ने इस गजल को बहुत ही पसंद किया है। ये चराग बे नजर है, ये चराग बे नजर है, ये सितारा बे जुबान है, अभी तुझे से मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है, ये चराग बेनजर है।
वाह क्या बात है चंदन जी, मेरी बड़ी पसंदीदा गजल आपने सुना दी, थैंक्स फॉर दैट। एक थोड़ा शरारती सा सवाल है, अगर इजाजत हो तो पूछ लेता हूँ आपसे। जिस दौर में आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और उस दौर में जब गज़लें बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी, तो जगजीत सिंह जी जो थे वो अपनी पत्नी चित्रा सिंह जी के साथ जोड़ी बनाकर गाते थे, और इसी तरह से राजेंद्र जी भी मीना जी के साथ जोड़ी बनाकर गाते थे। तो जब यामिनी जी आपके जीवन में आई, तो आपको कभी लगा, क्योंकि वो भी गाती थी और गाने का शौक रखती थी, तो कभी आपको लगा कि आपको भी जोड़ी में इस तरह से गाना चाहिए?
हाँ, मेरी वाइफ जो है म्यूज़िकल फैमिली से ही हैं। इनके फादर पंजाब के मशहूर के पन्नालाल जी थे, जिनका एल्बम काफ़ी मशहूर है पंजाबी में। और जहाँ तक मेरी वाइफ की बात है, लिखती भी बहुत अच्छी हैं और गाती भी हैं बहुत अच्छी। लेकिन जैसे चित्रा जी, जगजीत जी गाते थे, इस तरह ये कंफर्टेबल नहीं थी और ये हमारा ही डिसीजन था।
जी चंदन जी, बस एक सवाल यूं ही जहन में आया तो मैंने पूछ लिया था, बस आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा, आपकी एक और एल्बम जो थी वो बहुत मकबूल हुई थी, वो थी कितने ही रंग, और इसी एल्बम में थी वो बहुत ही शानदार गजल, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। यकीन मानिए, आज इतने सालों के बाद, मेरा ख्याल है शायद 83 या 84 में ये एल्बम आई होगी, और आज करीब 32-33 साल हो गए, और आज भी इसका नशा उतना ही गहरा उतरता है दिल में। तो इसकी बात किए बिना अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी इस गज़ल के साथ। तो ये गज़ल हम अपने श्रोताओं को सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी आवाज़ में एक बार दो लाइनें हो जाए तो हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे।
हाँ सचिव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये गज़ल ऐसी है कि मैं कोई भी प्रोग्राम में जाता हूँ ना, ये मुझे कम से कम दो बार गाना पड़ता है। जब कुछ लोग आए हुए होते हैं और कुछ लोग जब बाद में आते हैं, बोले वो गज़ल हुआ है कि नहीं, वो गज़ल एक बार और गाइए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं इसी के लिए मैं एक लाइन में इसका सुना देता हूँ आपको। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की,
कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। चंदन जी, जब आप ये गाते हैं ना तो सच में दिल में उतर जाते हैं। मुझे यकीन है कि आज हमारे श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे भर भर के दुआएं दे रहे होंगे। साल का अंतिम एपिसोड और आपकी आवाज़ का नशा, और क्या चाहिए बताइए संगीत प्रेमियों को। चंदन जी, ये गज़ल हम सुनते हैं, इसके बाद ये हमारा सॉन्ग ब्रेक है, और इसके बाद मैं आपसे लौट के मिलता हूँ, और ढेर सारी बातें मुझे अभी और करनी है, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने भी अपने सवाल मुझे भेजे हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले सुनते हैं ये गजल।
न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया और कार्यक्रम है एक मुलाकात जरूरी है। ये साल का अंतिम एपिसोड है यानी कि नव वर्ष विशेष एपिसोड है हमारा इस कार्यक्रम का। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मशहूर गजल गायक चंदन दास जी। चंदन दास जी, हमने इस एपिसोड के बारे में पहले से ही घोषणा कर दी थी कि आप हमारे मेहमान होने वाले हैं, और इसी के चलते बहुत सारे श्रोताओं ने जो आपके बहुत बड़े फैन हैं वास्तव में, और उन्होंने हमें बहुत सारे सवाल भेजे हैं आपसे पूछने के लिए। मैं ऑब्वियसली सारे तो नहीं शामिल कर पाऊंगा, कुछ सवाल मैं जरूर मैंने चुने हैं जो मैं आपसे एक एक करके पूछने जा रहा हूं। चंदन जी, ये पहला सवाल है विवेक रस्तोगी जी का जो बैंगलोर से हैं, एक जाने पहचाने ब्लॉगर हैं। ये एक कंसर्न अपना जता रहे हैं गजलों के प्रति। ये लिखते हैं, आजकल गजलों को कम सुना जा रहा है और कम ही गजलें मार्केट में आ रही हैं, बाजार में आ रही है। गजल के कार्यक्रम भी कम हो रहे हैं, ऐसे में गजल प्रेमी केवल पुरानी गजलों को ही सुन पा रहे हैं, तो नई गजलें श्रोताओं तक लाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं।
नहीं सचिव जी, ऐसी बात नहीं है। हम प्रोग्राम तो काफ़ी सारा करते रहते हैं, जहाँ भी आप देखेंगे हमारे फेसबुक में आप देखेंगे हम कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, हम डालते हैं वहाँ पे। कोई भी नया प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, हम वहाँ फेसबुक में हम डालते रहते हैं। जहाँ तक एल्बम का सवाल है, तो एल्बम तो अभी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उसकी डाउनलोड हो जाता है, एक तो पायरेसी होती है, तो कंपनी वो निकालना बंद कर दिया, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अभी जो कुछ भी हम नया कुछ भी करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू हम लोगों को बताते रहते हैं। प्रोग्राम जो भी है या नई गज़लें कुछ भी हो, मैं उसके ज़रिए हम बताते रहते हैं, और लोग हमें अच्छे कमेंट्स वगैरह हमको देते रहते हैं।
जी चंदन जी, लेकिन एक बात तो गौरतलब है कि गज़ल गायन के क्षेत्र में अब उस तरह के गायक नहीं सामने आ पा रहे हैं। चैनलों ने और संगीत कंपनियों ने तो इस हुनर को बिल्कुल प्रमोट करना बंद सा कर दिया है, तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या 80 और 90 के दशक का वो दौर फिर कभी लौट सकता है?
सजीव जी, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, और ऐसा नहीं है कि लोग गज़ल गाना छोड़ दिया है या गज़ल नहीं गाएंगे, क्योंकि शायरी भी हो रही है। और जो यंग लोग हैं, हम जहाँ कहीं भी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तो जो यंग लोग हैं बहुत ज़्यादा गज़ल के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्लासिकल के लिए भी है, गज़ल के लिए भी है, उतना ही है गज़ल के लिए। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि कुछ और ज़रिए आएंगे, और इससे भी मैं समझता हूँ इससे भी अच्छा होगा, जो अभी पहले नहीं हुआ था उससे भी बहुत अच्छा होगा।
जी चंदन जी, अच्छा अगला सवाल है मुबीन अहमद खान का, जो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम करते हैं और बहुत ही रचनात्मक आदमी हैं। इन्होंने पूछा है कि आप जब किसी कलाम को गाने के लिए सेलेक्ट करते हैं तो उस रचना की किन खूबियों का आप खास ख्याल रखते हैं, ये बताइए।
जब मैं गज़ल सिलेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि वो गज़ल मुझे कितना पसंद है, मेरे दिल को कितना अच्छा लग रहा है, और उसमें मैं पोइट्री देखता हूँ, आसान लफ्ज हो उसमें और उसका मीनिंग जो है वो गहरा हो, क्योंकि जब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो जो सुनने वाले हैं उसको कैसे अच्छा लगेगा, तो इसका मैं ध्यान रखता हूँ। ये ध्यान रख के मैं गजल सेलेक्ट करता हूँ।
जी, यानी एक गजल गायक को संगीत के अलावा साहित्य की भी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अगर शेर व शायरी की समझ अगर ना हो तो आप कैसे गाएंगे। समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कभी भी जैसे मुशायरा वगैरह हुआ करता था तो हम शायरों के टच में रहते थे और उनके साथ बाकायदा गज़लों के बारे में डिस्कशन करना कि ये किस तरह की गज़ल है, कैसा है, रोमांटिक है, सैड है, इसके बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है।
चलिए पॉजिटिव नोट पर एक गज़ल और सुना दीजिए जो मुझे बहुत पसंद है, उसकी गली में मुझको फिर एक बार ले चलो। इस गजल में आपने जो दर्द भरा है चंदन जी, वो कमाल का है, क्या कहने। तो प्लीज एक बार मेरी फरमाइश पर हो जाए।
उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो, उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो, मजबूर करके मुझको मेरे यार ले चलो, ले चलो उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो।
वाह बहुत खूब चंदन जी। अच्छा एक सवाल और है मेरे पास प्रसन्न वदन चतुर्वेदी का, जो कि एक राइटर हैं, और ये पूछते हैं कि आप नए रचनाकारों की रचनाओं को कब आवाज देंगे। इसी से जुड़ा मैं भी आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इन दिनों लाइव शोज या कॉन्सर्ट्स के अलावा आप किसी नई एल्बम पे काम कर रहे हैं क्या, और अगर काम कर रहे हैं तो क्या इन नए कलाकारों को, रचनाकारों को क्या आप मौका देना चाहेंगे, और अगर देना चाहेंगे तो किस तरह से ये लोग आप तक पहुंच सकते हैं।
मैं नए शायरों को ज़रूर मैं चांस देता हूं, वैसे भी बहुत सारे नए शायर के कलाम मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैं प्रोग्राम में भी गाता हूँ, और कोई भी अगर अच्छा लगता है मुझे, सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे वो कलाम पसंद होनी चाहिए कि किस तरह का कलाम है, क्या है, और मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं ज़रूर गाऊंगा।
चंदन जी आपके सुपुत्र नमित दास जो हैं वो इन दिनों टेलीविज़न पर बहुत लोकप्रिय हैं और उनके काफ़ी एक्टिंग असाइनमेंट्स आते रहते हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, तो उनके कैरियर को लेकर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि वो भी गायन के क्षेत्र में कुछ करें।
थैंक यू संजीव जी, आपने नमित के लिए पूछा। नमित को बचपन से ही म्यूज़िक में शौक था और उसने बाकायदा तालीम ली है म्यूज़िक की और म्यूज़िक सीख भी रहा है। मैं आपको ख़ास तौर से बताना चाहूँगा, शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि उसका एक बैंड है, उसका नाम है नमित दास प्लस अनुराग शंकर, ये उसका एल्बम है जो आया है, तो वो म्यूज़िक में भी उतना ही काम कर रहा है जितना एक्टिंग में कर रहा है, तो मैं उसके काम से बहुत खुश हूँ, वो बहुत आगे जाएगा, हम दुआ करते हैं।
चंदन जी आपने मेरे और मेरे सभी श्रोताओं के सवालों को बहुत ध्यान से सुना और उनके जवाब दिए। एक आखिरी सवाल मैं और रख रहा हूँ आपके पास जो विजय सतपति जी ने भेजा है। विजय सतपति जी जो हैं वो एक बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं और ये लिखते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं और साथ में बड़े मशहूर ब्लॉगर भी हैं, कवि भी हैं, और ये एक्चुअली कोई सवाल आपसे नहीं पूछ रहे बल्कि ये आपसे एक गज़ल की फरमाइश रख रहे हैं, और वो गज़ल है तेरे बगैर जिए जा रहा हूँ मैं। ये गज़ल जो है अगर आप इनके लिए सुना सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा।
हाँ संजीव जी मैं ज़रूर सुनाऊंगा, उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे, तो मैं विजय जी और आप सबके लिए मैं ये गज़ल पेश कर रहा हूँ। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया
चंदन जी, आपने हमारे इस नव वर्ष विशेषांक में आकर और हमसे इतनी सारी बातें कर अपनी आवाज़ में अपनी गजलें सुनाकर हम सभी श्रोताओं को अभिभूत कर दिया है। और जाते जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आपको, आपके पूरे परिवार को, हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि आप आने वाले सालों में भी इसी तरह से अपनी आवाज़ का जादू श्रोताओं पर बरकरार रखें। जाते जाते चंदन जी, मैं चाहता हूँ एक डिफ़िकल्ट टास्क आपको दूँ कि आप ये जो नया साल आ रहा है 2017, इसकी शुभकामनाएं हमारे श्रोताओं को दें, लेकिन अपने म्यूजिकल अंदाज में।
आप सबको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नए साल के लिए मैं एक गाना पेश कर रहा हूँ। नए घड़े के पानी से जब मीठी खुशबू आती है, यूं लगता है जैसे मुझको तेरी खुशबू आती है। नए घड़े के पानी से जब मीठी खुशबू आती है, यूं लगता है जैसे मुझको तेरी खुशबू आती है, तेरी खुशबू आती है, तेरी खुशबू आती है। कितने ही युग बीत गए हैं उसको अपने गांव गए, कितने ही युग बीत गए हैं उसको अपने गांव गए। आज भी मेरे कमरे से मेहंदी की खुशबू आती है, आज भी मेरे कमरे से मेहंदी की खुशबू आती है। यूं लगता है जैसे मुझको तेरी खुशबू आती है, तेरी खुशबू आती है, तेरी खुशबू आती है।
वाह क्या बात है चंदन जी, बहुत बढ़िया। मन तो करता है कि आप यूं ही गाते रहें और हम आपको यूं ही बैठे बैठे सुनते रहें, लेकिन समय की भी अपनी पाबंदियां होती हैं। तो दोस्तों, ये थे मशहूर गज़ल गायक चंदन दास। इसी के साथ हम इस साल के अंतिम एपिसोड में आ गए हैं और अब आपसे मुलाकात होगी अगले साल 2017 में। 2017 आप सबके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आए और इस नए साल में आपके सभी सपने पूरे हो, यही हमारी और हमारी पूरी टीम की कामना है। आप लोग इसी तरह से संगीत सुनते रहिए, खुश रहिए और अगले सप्ताह का इंतजार कीजिए जब मैं आपके साथ किसी नए कलाकार को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत, नमस्कार।
आज वीरान अपना घर देखा तो कई बार झांक कर देखा, पांव टूटे हुए नजर आए, एक ठहरा हुआ सफर देखा। मैं जिसे बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जिसे बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता
India.